जी कौन से सेशन स्टार्ट करिए, गर्ल्स में बॉयज में? ठीक है, जज़ाकुमुल्लाह। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह वकफा वसलामुन अला इबादिल्लज़ीन अस्तफा, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लून अलन नबी या अय्युहल्लज़ीन आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم। اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما। तो ये सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्लास है जिसमें हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि हमने आपको बताया था कि इस क्लास के अंदर एक तो वुजू का भी ख्याल रखें, वुजू के साथ बैठें, और दूसरी बात यह कि ये जो हमने आयत तिलावत करी थी सूरह अहज़ाब की आयत, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बेशक अल्लाह ताला और उसके मलाइका नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर सलात व सलाम भेजते हैं। तो ए ईमान वालों, तुम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दुरूद शरीफ भेजा करो, है ना। तो दुरूद शरीफ से हम शुरू भी करेंगे और बीच बीच में भी जब याद आता रहे या जब नबी अलैहिस्सलाम का नाम आए तो उस वक्त ज़रूर से दुरूद शरीफ पढ़ें। اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم। ठीक है, इतना तो हक बनता है ना कम अज कम नबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमारे ऊपर कि हम आपसे सबके ऊपर बहुत ज्यादा दूर पड़ा करें। ठीक है, तो अब पिछली क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था, आपसे पूछें या आगे बढ़े, खुद ही बता दें। कोई बड़ी चीज पिछली क्लास के बारे में किसी को याद हो जो हमने मेंशन करी थी, डिस्कस करी थी, कोई एक बात कोई आपने से बताएगा लास्ट क्लास के अंदर क्या करा था? जी, आखिरी क्लास में लास्ट सैटरडे हमने क्या एक मेन बात डिस्कस करी थी, हाउ अब्दुल मुतलिब गॉट हिज नेम। वेरी गुड, माशाल्लाह, ये बहुत अच्छी बात आपने याद दिलाई। ठीक है, आप सर, आपका जो असली नाम क्या था, शैबा नाम था। ठीक है, और दूसरा यहाँ बताया गर्ल्स ने कि फैमिली लिनियज ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, इन शॉर्ट ये कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से लेकर के नीचे तक कितने लिंक्स या कितनी जनरेशन्स थी, तो अंदाजन 60 या 61 generations बनती हैं, 61। ठीक है, जिसमें से कि 40 जो थी ना वो बनती थी अदनान तक। एक थे ना अदनान, आप सस्रम के ऊपर 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 जाकर के एक अदनान आते थे, तो वहां तक तो 40 बनती थी, और अदनान से नीचे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक 21 generations। तो 40 plus 21 is equal to 61 generations तकरीबन बनती हैं। ठीक है, अच्छा, ये भी किया था डिस्कस। और दूसरी एक बहुत बड़ी बात, दूसरी बड़ी बात ये थी कि जमजम की वेल जो गुम हो गई थी या छुपा दी थी, है? तो हाँ, द डिस्कवरी ऑफ द वेल ऑफ जमजम, एग्जैक्टली। ठीक है, तो इसके बारे में भी बात करी थी। ठीक है, तो चले, पूरा हम तो सारी क्लास डिस्कस नहीं कर सकते ना, तो अब हमने आगे भी बढ़ना है। तो आगे बढ़ने से पहले पीछे की एक चीज जो कि रह गई, ठीक है, वो क्या रह गई थी, क्योंकि जब हमने पिछली से पिछली क्लास में आपको बताया था हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जो मक्का मुकरमा के ट्रिप्स थे, है ना, एक दफा आए हजरत इस्माइल और हाजरा को छोड़ करके गए, रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को छोड़ करके गए थे। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरी दफा आए थे मिलने के लिए, फिर उसके बाद तीसरी दफा आए थे मिलने के लिए। अच्छा, दूसरी दफा जो मिलने के लिए आए थे उसमें कुर्बानी वाला वाकया पेश आया था। ठीक है, उसके बाद तीसरी मरतबा आए थे मिलने के लिए, तो वो इस्माइल अलैहिस्सलाम की जो पहली बीवी थी उनका वाला वाकया पेश आया। फिर चौथी दफा आए मिलने के लिए, तो इस्माइल अलैहिस्सलाम की दूसरी बीवी का वाला वाकया पेश आया। और फिर पांचवी दफा मिलने के लिए आए तो काबतुल्ला की तामीर वाला वाकया पेश आया। ठीक है, काबतुल्ला को बनाया, तो जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने काबतुल्ला को बना लिया था ना, तो उसके बाद उन्होंने एक दुआ मांगी थी, बड़ी जबरदस्त दुआ, कुरान के अंदर मनकूल है। उस दुआ में से वो वाला हिस्सा جو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں تھا وہ مینشن کرنا بہت ضروری ہے ہماری اس کلاس کے لیے, ٹھیک ہے, تاکہ ہمیں پتا چلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی اور اس دعا کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرما کر کے دنیا میں ابراہیم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا تھا, ٹھیک ہے. If you are in prayer then someone says صلی اللہ علیہ وسلم, then should you say صلی اللہ علیہ وسلم or no? If you are in prayer, اگر آپ نماز میں ہیں, نہیں تو نماز میں آپ کوئی ایسا کام نہیں کر سکتے جو کہ نماز کے اندر نہیں تھا, ٹھیک ہے, باہر سے آپ سن کر کے نماز میں آپ پھر درود شریف پڑھنا نہیں شروع ہو سکتے, ٹھیک ہے. اچھا, تو ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی تھی اس میں ایک حصہ کیا تھا, انہوں نے فرمایا تھا اللہ تعالیٰ سے, ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. یہ دعا سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہاں مینشن کری ہے جہاں ابراہیم علیہ السلام کے اور اسماعیل علیہ السلام کے کعبۃ اللہ کے بلڈ کرنے کا واقعہ ہے نا. تو وہاں پر کیا دعا مانگی تھی, ربنا اے ہمارے رب, وابعث فیہم رسولا, کہ ان لوگوں کے درمیان, ان لوگوں سے مراد یہاں پر جو مکہ مکرمہ کے جو لوگ ہوں گے, ٹھیک ہے نا, جو مکہ مکرمہ میں لوگ رہتے ہیں, ان لوگوں کے درمیان ایک رسول بھیجئے, منہم انہی میں سے ایک رسول بھیجئے. تو ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام وہاں پر تھے اور اسماعیل علیہ السلام کی اولادیں ہونی تھیں مکہ مکرمہ کے اندر جنہوں نے پھر اسٹیبلش ہونا تھا. تو انہی لوگوں کے درمیان انہی لوگوں میں سے ایک رسول بھیجئے جو کیا کرے. ابراہیم علیہ السلام نے دعا میں یہ بھی فرمایا کہ وہ یتلو علیہم آیاتکا, ان لوگوں کے سامنے آپ کی آیتوں کی تلاوت کرے, ٹھیک ہے, آپ کی یعنی اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی تلاوت کرے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ, اور ان کو کتاب کا علم پڑھائے سکھائے, یعنی جو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہوگی اس وقت اس رسول کے پاس تو اس کا علم پڑھائے. وَالْحِکْمَتَ, اور ان کو وزڈم سکھائے, حکمت سکھائے, ٹھیک ہے. وَيُزَكِّيهِمْ, اور ان کو پیوریفائی کرے, یعنی جن گناہوں کے اندر وہ لوگ مبتلا ہوں ان گناہوں سے ان کو پاک کرنے میں یا ان گناہوں کو چھوڑنے میں ان کی مدد کرے, ان کو گائیڈ کرے, ٹھیک ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اس وقت دعا مانگی کعبۃ اللہ کو بنانے کے بعد, اور اس دعا کے اندر انہوں نے دوسری چیزیں بھی مانگی اور ساتھ ساتھ ایک رسول بھی مانگا کہ میری اولاد میں سے انہی لوگوں کے درمیان ایک رسول بھیجیں, اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ چار چیزیں بھی اسپیسیفائی کر دیں اللہ کے سامنے کہ اللہ وہ رسول جو ہے نا وہ یہ یہ کام کرتا ہو, ٹھیک ہے, لوگوں کو دین کی دعوت دے, کیونکہ جب قرآن کی تلاوت کریں گے تو اس سے دین کی دعوت دیتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کے سامنے قرآن پڑھ کر کے, ٹھیک ہے, اور ان کو قرآن کی جو ڈیٹیلز ہیں قرآن کے اندر وہ سکھاتے تھے. یعلمہم الکتاب والحکمہ, اور ان کو وزڈم بھی سکھاتے تھے کہ بھئی تم اپنی زندگی کو بہترین طریقے سے کیسے سپینڈ کر سکتے ہو, اس کو وزڈم کہتے ہیں, حکمت کہتے ہیں اس کو, ٹھیک ہے, اور ساتھ ساتھ گناہوں سے بچنے کے طریقے بھی سکھاتے تھے, شیطان سے بچنے کے طریقے, نفس سے بچنے کے طریقے, ٹھیک ہے. تو سبحان اللہ, ابراہیم علیہ السلام نے اراؤنڈ 4000 ایئرز پہلے, بلکہ اراؤنڈ 3000 ایئرز پہلے, اس زمانے سے پہلے 3000 ایئرز گزرے ہوئے تھے, جو دعا مانگی تھی اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول کر لیا, لیکن اس دعا کا جو نتیجہ تھا, جو رزلٹ تھا, وہ کب دنیا میں بھیجا, جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے, جو کہ تقریباً 2500 ایئرز کے بعد ہوا, ٹھیک ہے, 2500 ایئرز کے بعد, ٹھیک ہے, کیونکہ ابراہیم علیہ السلام اور ہمارے زمانے میں کتنا فرق ہے, اراؤنڈ 4000 ایئرز کا. پہلے بھی ہم نے جو سورہ کہف میں ذوالقرنین کا واقعہ پڑھا تھا تو وہاں پر یہ بات ڈسکس کری تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کو گزرے ہوئے کتنا عرصہ ہو چکا ہے, تو 4000 ایئرز لوگ کہتے ہیں جو ہسٹورینز ہیں, ٹھیک ہے, اور نبی علیہ السلام کو گزرے ہوئے کتنے سال ہو چکے ہیں, 1400 ایئرز ہو چکے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو اب 4000 میں سے 1400 نکال لیں تو کتنے بنیں گے, اراؤنڈ 2500 کے قریب سال بنیں گے, ٹھیک ہے. تو دعا اللہ تعالیٰ قبول کر لیتے ہیں, لیکن اس کو دنیا میں دکھاتے کب ہیں, ضروری نہیں ہے فوراً دکھائیں, بلکہ فوراً بھی دکھا سکتے ہیں, بہت دنوں کے بعد بھی دکھا سکتے ہیں, اور یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کی قبولیت इस दुनिया में दिखाएं नहीं, बल्कि कब दिखाएं? आखरत के अंदर दिखाएं। आखरत में उसके बदले हमें बहुत ज्यादा सवाब अता फरमाएं, बहुत सारी नेमतें अता फरमाएं उस दुआ के बदले में जो कि हमने दुनिया में मांगी थी, लेकिन अल्लाह ताला ने दुनिया में उसकी कबूलियत दिखाई नहीं। ठीक है ना? तो द पॉइंट टू रिमेंबर, पॉइंट टू टेक होम इज कि जब हम अल्लाह ताला से दुआ मांगने, ठीक है, अच्छे से जो सही तरीका होता है दुआ मांगने का, उस सही तरीके के साथ जब हम दुआ मांग लें तो फिर हम जल्दी ना करें कि क्यों नहीं अभी तक दुआ नजर आ रही, उसकी कबूलियत नजर क्यों नहीं आ रही। भाई इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ 2500 साल के बाद दुनिया के अंदर कबूलियत उसकी नजर आई थी, है ना, हालांकि अल्लाह ताला के फ्रेंड थे, खलीलुल्लाह थे। तो फिर हम कौन है भाई? हम तो खलीलुल्लाह भी नहीं होते, हम तो कोई ऐसे भी नहीं होते। ठीक है, एनीवेज, तो ये दुआ मांगी थी अल्लाह ताला ने, इस दुआ के बदले में नबी अलैहिस्सलाम को यही चार काम दे करके इस दुनिया में भेजा, है ना। और कुरान के अंदर फिर इसका तस्करा भी किया, चार जगहों पे तस्करा किया कि हमने ऐसे रसूल को भेजा ईमान वालों के दरमियान, यानी कि मक्का मुकरमा के लोगों के दरमियान भेजा, जो कि तिलावत करते थे अल्लाह ताला की आयतों के और उनको जो है वो इल्म पढ़ाते थे और उनका तज़किया करते थे। ठीक है, किसी को कोई क्वेश्चन है इस बात के ऊपर तो आप लिख के पूछिएगा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हम आप सल्लम की लिनियज के बारे में एक और बात रिपीट करेंगे कि जो हमने आपको एक लिनियज ट्री भेजा था ना पिछली क्लास में, शेयर भी किया था और व्हाट्सएप के ऊपर भी भेज दिया था, तो उसमें था ना जिक्र, एक किलाब का जिक्र था, ठीक है, जो कि आप सल्लम के ग्रेट 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 ग्रैंडफादर ऊपर जाकर के एक थे जिनका नाम किलाब था। ठीक है, तो उनके बारे में बुक्स में लिखा हुआ है, ये भी आप सुन लीजिए, कि उनका असल नाम जो था ना वो किलाब नहीं था बल्कि उरवा या हाकिम था, या तो हाकिम था उनका नाम या उरवा नाम था, लेकिन उनको किलाब कहते क्यों थे, क्योंकि वो ना कुत्तों के बारे में बहुत, कुत्तों के बहुत शौकीन थे। ठीक है ना, यानी वो डॉग्स रखते थे, अब हंटिंग के लिए रखते होंगे या प्रोटेक्शन के लिए रखते होंगे, जिसकी इजाजत है कि उसके लिए आप डॉग्स को रख सकते हैं, कुत्तों को, ठीक है। बहरहाल ही वाज वेरी पैशनेट अबाउट डॉग्स, तो बुक्स में लिखा हुआ है कि बिकॉज ऑफ हिज पैशन फॉर डॉग्स ही वाज कॉल्ड किलाब, बिकॉज किलाब कल्ब की जमा है, कल्ब कुत्ते को कहते हैं, डॉग को, ठीक है। चलिए, दैट्स वन थिंग। दूसरी बात ये कि इन्हीं के बेटों में फिर एक थे कुसई, ठीक है ना, कुसई बिन किलाब, सही है। तो जो कुसई बिन किलाब थे तो ही वॉज अ वेरी प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी, ठीक है ना। इन्होंने जो है ना वो जो मक्का मुकरमा की लीडरशिप थी वो एक दूसरे कबीले से वापस ली थी, एक कबीला था बनु खुजा, ठीक है, जो कि कुरैश नहीं था, वो जाहिर ऊपर जाके तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम से उसकी लीनियज मिलती थी, लेकिन दे वर नॉट कुरैश, दे हैड यूजर्प्ड द लीडरशिप ऑफ मक्का मुकरमा फ्रॉम कुरैश, फ्रॉम इस्माइल अलैहिस्सलाम्स चिल्ड्रन, ठीक है, तो फ्रॉम कुरैश, ठीक है। तो जो कुसई थे ना उन्होंने बनु खुजा से जो है वो जंग करके मक्का मुकरमा की लीडरशिप वापस ली थी, तो कुसई जो थे ना ये फिर मक्का मुकरमा के एक अनडिस्प्यूटेड लीडर थे, इनके पास काबतुल्ला की चाबियां भी होती थी, ठीक है ना, आपको पता है काबतुल्ला के अंदर एक डोर है, उस डोर को जो है वो बंद रखते हैं, तो उसके अंदर बाकायदा लॉक एंड की होती है, ठीक है, तो काबतुल्लाह की चाबियां भी इनके पास थी, और ये लोग, ये जो है ना वो जो हज करने के लिए लोग आते थे काबतुल्लाह, तो उनको फिर खाना भी खिलाया करते थे और उनको यानी खाना पानी वगैरह इन सब का इंतजाम करते थे, ठीक है। हस्कीज आर अलाउड टू कीप इन होम, हस्कीज नहीं, आपको अभी बता तो दिया है कि डॉग्स घर के अंदर नहीं रख सकते हैं, बल्कि उनको प्रोटेक्शन के लिए यानी हिफाजत के लिए और हंटिंग के लिए रख सकते हैं, जो कि घर के बाहर इजाजत है उसकी, ठीक है। एनीवेज, तो कुसई थे, अच्छा कुसई के एक बेटे थे अब्द मनाफ, ठीक है, इनके और अब्द मनाफ के एक बेटे थे हाशिम, और हाशिम के एक बेटे थे शैबा, जिनका नाम अब्दुल मुतलिब पड़ गया था, ठीक है। अच्छा, ये अब्दुल मुतलिब जो थे फिर नबी अलैहिस्सलाम सलाम के दादा थे, और वो फिर बाद में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे फिर नबी अलैहिस्सलाम सलाम तक बात पहुंची। एक और बात आपको बतानी थी कि जो मक्का मुकरमा के अंदर बुतों की परस्तिश यानी आइडल वर्शिप ये कब शुरू हुई, ठीक है। तो ये लोग जो थे ना, ये बुतों की परस्तिश नहीं करते थे, ये लोग तौहीद पर थे काफी हद तक, ठीक है। कुछ इन्होंने गलत हरकतें शुरू भी कर दी थी, लेकिन यानी गुनाह वगैरह भी शुरू किए थे, लेकिन इन इन ओवरऑल जो है ना, ये बुतों को पूजा नहीं करते थे, ठीक है। हुआ ये कि जिन दिनों खुजा की हुकूमत थी, बनू खुजा जो ट्राइब था उसकी जब हुकूमत थी ना मक्का मुकरमा में, तो इन लोगों ने बहुत बुरे काम करने शुरू कर दिए थे, ठीक है ना। जैसे पिछली क्लास में भी आपको बताया था ना कि इन्होंने काबतुल्ला को ना डिसरिस्पेक्ट भी करना शुरू कर दिया था। अब पता नहीं वो गंदगी डाल दिया करते थे या क्या करते थे, कैसे डिसरिस्पेक्ट करते थे, ये डिटेल्स नहीं लिखी हुई, लेकिन समहाउ दे हैड स्टार्टेड डिसरिस्पेक्टिंग काबतुल्ला, ठीक है। अच्छा, इन्हीं लोगों में ना एक लीडर था इनका, जिसका नाम था अमर बिन लुहाई। अमर बिन लुहाई ये जो लीडर था ना, इसने एक दफा ट्रैवल किया शाम का, यानी जो सीरिया का कंट्री होता है ना, वहां पर वो ये लोग जाते थे, आई थिंक कुछ कामों वामों से। तो अमर बिन लुहाई जो है ना, जब शाम गया ना, तो वहां पर इसने कुछ लोगों को देखा कि वो बुतों की पूजा कर रहे थे, उन्होंने बुत बनाए हुए थे और उनके सामने सजदा करते थे। तो ये अमर बिन लही जो था, लुहाई जो था ना, अमर बिन लुहाई, अब ये लोग पहले ही जो है वो गुनाहों के अंदर पड़े हुए थे। झूठ बोलना बहुत बड़ा गुनाह होता है, राइट, और लोगों को मारना, तंग करना, जुल्म करना, ये बहुत बड़े बड़े गुनाह होते हैं। तो ये गुनाह तो ये लोग पहले ही कर रहे थे, ठीक है। तो जब इंसान बहुत ज्यादा गुनाह करता है ना, तो शैतान जो है ना उसको उस गुनाह के अंदर और आगे बढ़ाता है, उसको और पुश करता है मजीद गुनाह करने के लिए, ठीक है। जब भी ना, हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि भाई हम तो सिर्फ गुनाह कर रहे हैं, हम कोई बड़ा काम नहीं कर रहे, कोई बड़ी बात नहीं कर रहे, हमने कोई कुफर को थोड़ी किया है, नॉन मुस्लिम को थोड़ी बने, हम तो मुसलमान ही है, हाँ बस गुनाह कर लेते हैं तो क्या हो गया। नहीं, ये हम कभी भी नहीं कर सकते, अपने गुनाह को जस्टिफाई हम कभी भी नहीं कर सकते। व्हाई? बिकॉज व्हेन वी डू गुनाह देन वी आर एक्चुअली फॉलोइंग इन द फुटस्टेप्स ऑफ द शैतान, ठीक है ना। गुनाह करना ये शैतान का काम है, ये नबियों का काम नहीं है गुनाह करना, ये अल्लाह ताला के फ्रेंड्स का काम नहीं है गुनाह करना, ठीक ना। तो जब भी हम गुनाह करते हैं तो हम एक्चुअली शैतान को फॉलो कर रहे हैं ना। तो जब शैतान को फॉलो करेंगे तो भाई शैतान किधर जा रहा है? जहन्नम में जा रहा है, राइट। तो आप भी जहन्नम की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे ना, बिकॉज यू आर फॉलोइंग द शैतान, ठीक है ना। चाहे कोई भी गुनाह करें, कोई भी किसी किस्म का भी गुनाह करें, नमाज छोड़ें, रोजा छोड़ें, या गंदी चीजें देखें, या गंदी बातें करें, जुबान से झूठ बोलें, या गाली दें, किसी को तंग करें, जो भी गुनाह करें, एवरी गुनाह इज फॉलोइंग द शैतान, राइट। कोई डिस्प्यूट है किसी को इसके ऊपर? कोई इनकार कर सकता है कि नहीं, नहीं ऐसा नहीं है, मैं तो शैतान को फॉलो नहीं करता? भाई आपके कहने से क्या होता है? गुनाह शैतान करता है, गुनाह अल्लाह के नबी तो नहीं करते ना। तो आप शैतान को फॉलो कर रहे हैं, इस वजह से इफ वी डू गुनाह, गलती से हो जाता है, उसका मसला नहीं है, गलती से किसी से भी गुनाह हो सकता है, लेकिन इमीडिएटली अल्लाह ताला से माफी मांग लें, इमीडिएटली, और तौबा कर लें, अल्लाह गलती हो गई, आप मुझे माफ कर दीजिए, अब नहीं करूंगा, अल्लाह ताला से फौरन माफी मांग लें, ठीक है। अच्छा, अगर नहीं माफी मांगेंगे ना तो क्या होगा? आपने एक गुना किया ना, शैतान जो है ना फिर आपसे दूसरा गुना भी करवाएगा, फिर दूसरे के बाद तीसरा गुना करवाएगा, तीसरे के बाद चौथा गुना करवाएगा, हत्ता के वन डे ही विल बी एबल टू टेक यू आउट ऑफ इस्लाम, वो आपको इस्लाम से बाहर निकाल लेगा, काफिर बना देगा वो आपको, ठीक है। ऐसे ही हुआ अमर बिन लुहाई के साथ भी, क्योंकि ये गुनाह बहुत ज्यादा करता था, तो इस वजह से ना क्या हुआ इसके साथ कि शैतान ने इसके दिल में ऐसी बात डाली कि इसने जब बुतों को देखा ना शाम में, तो इसको वो बड़ा अच्छा लगा कि यार ये तो बड़ा अच्छा तरीका है वर्शिप करने का, हमें तो खुदा अपना नजर भी नहीं आता, इनके तो खुदा इनके सामने होते हैं, है ना। इस किस्म की बात डाल दी शैतान ने इसके दिल में, है ना, कि भाई खुदा हमारा तो खुदा नजर नहीं आता, इनको तो खुदा नजर आता है इनका, यानी जो बुत है सामने नजर आता है ना, ठीक है। तो अब ना इसने कहा कि यार ये बड़ा अच्छा तरीका है, इसने क्या किया कि वहां से एक बुत खरीदा, या पता नहीं उनसे मांगा या खरीदा, जो भी किया, और उस बुत को लेकर के मक्का मुकरमा आ गया, ठीक है। और मक्का मुकर्रमा में आकर के इसने लोगों को बोलना शुरू किया कि देखो ये भी हम कर सकते हैं, हम बुतों को सामने रखें और उनके सामने सजदा करें। अब वहां पे जो लोग थे वो भी बहुत सारे गुनाहों में मुब्तला हो चुके थे और उन्होंने इसको अपना लीडर भी बनाया हुआ था, ठीक है। तो उन लोगों ने ना इसकी बात मान ली क्योंकि गुनाहगार लोग थे, लीडर भी गुनाहगार था। तो जो लोग होते हैं ना वो फिर अपने लीडर्स की बात माना करते हैं, ठीक है ना। तो इसी वजह से ना वी हैव टू बी वेरी केयरफुल हु वी मेक आवर लीडर। हमने किसी गुनाहगार को अपना लीडर बनाया हुआ है या हमने किसी नेक आदमी को अपना सरदार अपना लीडर बनाया हुआ है? अगर गुनाहगार को लीडर बनाया हुआ है ना, हम भी गुनाह करेंगे, हम भी उसी के पीछे पीछे चलेंगे, ठीक है ना। तो इनके साथ यही हुआ कि इनका लीडर जो है वो बुत लेकर के आया और उन्होंने उसने आकर के जो है ना वो लोगों को कहना शुरू कर दिया, लोगों ने इसकी बात मान ली। एंड दे स्टार्टेड वर्शिपिंग आइडल्स। इन्होंने, अच्छा ये जो बुत लेकर के आया था इसका एक नाम भी था बाकायदा, हुबल, हुबल नाम था। इसने वो बुत ला करके काबतुल्ला के अंदर रख दिया, ठीक है, और उसकी लोगों ने पूजा करनी शुरू कर दी। शुरू में थोड़े से लोगों ने करी होगी, आहिस्ता आहिस्ता जो है वो और लोगों ने भी करनी शुरू कर दी, ठीक है। ये एक जनरेशन में भी हो सकता है कि एक ही जनरेशन के अंदर सारे लोगों ने हुबल की पूजा करनी शुरू कर दी, और ये भी हो सकता है कि उस जनरेशन में सबने नहीं शुरू करी हो, लेकिन जो कि सो मेनी पीपल वर डूइंग इट एंड नोबडी वाज स्टॉपिंग इट, तो उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन थी यानी उनकी जो औलाद हुई उन्होंने फिर हुबल की पूजा शुरू कर दी, ठीक है। तो बहरहाल मक्का मुकर्रमा के अंदर देन इट बिकेम वेरी वाइड स्प्रेड, बहुत सारे लोगों ने फिर बुतों की पूजा शुरू कर दी। नॉट एवरीवन, 100% लोगों ने ऐसा नहीं किया, लेकिन मेजोरिटी लोगों ने ऐसे ही किया, ठीक है। तो ये शाम से जो है ना वो हुबल लेकर के आया था, हुबल नाम का एक बुत लेकर के आया था, ठीक है। अब जब यहाँ पे बुतों की पूजा शुरू हो गई तो ना फिर उस इलाके में दूसरी जगहों पर भी इसी तरह से शुरू हो गया। एक बुत था जिसका नाम था मनात, ठीक है, मनात। ये कहाँ पर था? ये कम कहीं जो रेड सी होता है ना, राइट, रेड सी के शोर के ऊपर कहीं पर था, ठीक है ना। उसका नाम मनात था, यानी जस्ट टेलिंग यू, हाँ, जद्दा, जद्दा के करीब था, जद्दा में था बल्कि ये, क्योंकि जद्दा जो है बिल्कुल रेड सी के शोर के ऊपर है ना। तो एक बुत था मनात, उसकी भी पूजा होती थी जद्दा के एरिया में। एक बुत था लात, ठीक है, लात की पूजा जो है वो ताइफ में होती थी, ठीक है। और एक बुत था उज्जा, उज्जा जो है वो भी एक जगह थी वादी नखला, वहां पर उज्जा बुत बना दिया लोगों ने और उसकी पूजा करनी शुरू कर दी। हत्ता के बुक्स में ये भी लिखा हुआ है कि अमर बिन लुहई जो था ना, उसका उसका एक फ्रेंड था जिन, जिन फ्रेंड था उसका, ठीक है ना। ऐसा होता है यानी जो बहुत बुरे लोग होते हैं ना वो जिनों से फ्रेंडशिप कर लेते हैं बाकायदा, ठीक है, और फिर जिनों से जो है ना वो कुछ सीक्रेट्स मालूम करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जिनों जिनों को अल्लाह ताला ने ताकत दी है कि वो बड़ी तेजी से दूसरी जगह पे जा सकते हैं, बहुत तेजी से बल्कि बाकायदा फ्लाई करके जा सकते हैं, है ना, और वो छुप करके चीजें देख सकते हैं, लोग उनको देख नहीं सकते जिनों को। इस वजह से जिनों के पास बहुत सारे सीक्रेट्स होते हैं, ठीक है ना, लेकिन वो क्योंकि नेक तो नहीं होते, गंदे होते हैं, इस वजह से गंदे सीक्रेट्स इंसानों को वो बताते हैं। तो किताबों में ये भी लिखा है कि अमर बिन लुहई का एक दोस्त था जिन, उस जिन ने इसको बताया कि जब नूह अलैहिस्सलाम की कौम तबाह हो गई थी ना सैलाब के अंदर, है ना, नूह अलैहिस्सलाम की कौम के ऊपर आया था पानी का सैलाब आया था और सारे काफिर मर गए थे सवाई नूह अलैहिस्सलाम के साथ जो कश्ती में सवार हुए थे उनके अलावा, ठीक है। तो बाद में जब ये पानी खत्म हो गया ना, तो जो बाद में काफिर वगैरह आया ना, उन्होंने जो बुत थे जिनकी पूजा नूह अलैहिस्सलाम के कौम करती थी उनको लेकर के जद्दा में दफन कर दिया था, ठीक है, जद्दा, या तो आई डोंट नो किसने दफन किया, ये काफिरों ने दफन किया या मुसलमानों ने दफन किया, जो भी किया, खैर उस जिन ने इनको इसको बताया कि जद्दा में ना ये जो बुत हैं वो भी दफन है, जो कि नूह अलैहिस्सलाम की कौम, वद सुआ है ना, यहूदा क्या है वो सूरह नूह के अंदर जिनका नाम भी लिखा हुआ है अल्लाह ताला ने, तो वो वाले बुत जो है ना वो फिर अमर बिन लुहई ने वहां से निकाले और बाकी ट्राइब्स को दे दिए, अरब के बाकी ट्राइब्स को, और बाकी ट्राइब वाले जो है ना वो इस बुतों को अपने अपने एरियाज में ले गए और वहां पे बुतों की परस्तिश शुरू कर दी, ठीक है। तो इस तरह से ना ये जो आइडल वर्शिप थी ये पूरे अरेबिया के अंदर फैल गई, हालांकि पहले अरब में लोग बुतों की पूजा नहीं किया करते थे, बुतों की पूजा तो दूसरी जगहों पर होती थी, इंडिया में होती थी और इवन सीरिया में होती थी या इजिप्ट में होती थी, अरेबिया में नहीं होती थी। ठीक है, अच्छा ये आपको हमने बता दिया आइडल वर्शिप कैसे अरब के अंदर फैली। ठीक है, किसी को कोई क्वेश्चन है? आइडल वर्शिप की बात हो गई। ठीक है, अब एक और रिलीजन के बारे में आपको बताना है, जुडाइज्म, ज्यूज, यहूदी। ठीक है, ये यहूदी अरेबिया में कैसे आए? तो इनके बारे में बुक्स में लिखा है कि यहूदी ओरिजिनली कहाँ रहते थे? फलस्तीन के अंदर, है ना, जहाँ पर के यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम रहते थे, राइट। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दूसरे जो बेटे थे इसहाक अलैहिस्सलाम, वो फलस्तीन में ही पैदा हुए थे। ठीक है, तो इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद वो फलस्तीन के एरिया के अंदर होती थी ना। अब ये जो लोग थे ये कौन थे? ये यहूदी थे, याकूब अलैहिस्सलाम की औलादें, बनी इसराइल जिनको कहते थे। ये लोग जो है वो मिस्र भी गए यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़माने में और फिर मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में फिर वापस वहाँ से निकल आए। ठीक है, तो ये लोग जो है ना, ये उस ज़माने के मुसलमान यही लोग थे। लेकिन जब ये बहुत ज़्यादा गुनाह करना शुरू हो जाते थे, अल्लाह की नाफरमानी, हत्ता कि ऐसा भी होता था कि ये लोग भी आइडल वर्शिप शुरू कर देते थे, यहूदी लोग भी। ठीक है ना, हाँ, वद, सुआ, यहूस, यूब और नसरा, ये पांच बुत हैं जिनका नाम सूरह नू के अंदर अल्लाह ताला ने मेंशन किया है। बिल्कुल सही, जज़ाकुल्लाह। ठीक है, तो ये जो यहूदी थे ना फलस्तीन में, तो ये जब बहुत ज़्यादा गुनाह करना शुरू हो जाते थे ना, हत्ता के ये काफिरों वाले काम करना शुरू हो जाते थे, बुतों की परस्तिश करना शुरू हो जाते थे, तो फिर अल्लाह ताला ना इनको सजा देते थे इस दुनिया में ही सजा देते थे। वो कैसी होती थी इनकी सजा ऐसी होती थी कि कोई दूसरी जो नेशन होती थी ना, नॉन मुस्लिम्स की नेशन, वो नेशन इनके ऊपर अटैक कर देती थी। ठीक है ना, और इनको बहुत मारती थी, बहुत सारे लोगों को जो है वो मार कत्ल कर देती थी और इनके बच्चों को जो है ना वो स्लेव्स बना लेती थी, इनकी औरतों को स्लेव्स बना लेती थी और इनके जो माल दौलत होता था ना उसको लूट के ले जाती थी। ठीक है ना, तो ये इनके साथ जो है ना वो कई दफ़ा हुआ, लेकिन सबसे ज़्यादा बड़े बड़े वाकया दो मरतबा इनके साथ हुए, दो मरतबा। ठीक है, एक मरतबा एक बादशाह था इराक से आया था, बुख्त नसर उसका नाम था, बुख्त नसर, उसने आकर के ना यहूदियों को बहुत मारा इनको, और जो बच गए उनको लेकर के अपने साथ इराक चला गया, इनके तमाम सोने चांदी और जेवर के साथ इराक लेकर चला गया इनको। ठीक है, उस जमाने में भी कुछ यहूदी भाग करके ना अरब आ गए थे उस जमाने में, जब बुख्त नसर ने इनको फलस्तीन में बहुत मारा था। ठीक है, अच्छा, उसके बाद फिर ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने के 70 ईयर्स के बाद, जब ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आए और फिर वो आसमान पर उठा लिए गए, तो उनके 70 ईयर्स के बाद फिर एक दफा एक और बादशाह था, टाइटस उसका नाम आता है बुक्स में। ठीक है, टाइटस ने आकर के फिर यहूदियों को बहुत मारा, क्योंकि इन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को मारने की कोशिश करी थी ना, अल्लाह के नबी को, ईमान नहीं लेकर के आया बल्कि उल्टा ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने की साजिश करी, तो फिर अल्लाह ताला ने इनको खूब जबरदस्त किस्म की सजा दी। तो उस वक्त भी जो है ना इनमें से बहुत सारे लोग भाग करके अरेबिया आ गए थे। ठीक है, तो इनमें से कुछ ट्राइब्स जो थे वो मदीना मुनव्वरा जो अब है ना, जो उस जमाने में यसरब होता था, ये यसरब के एरिया में आकर के सेटल हो गए थे। यसरब में क्यों सेटल हुए थे, किसी को पता है? यसरब में क्यों सेटल हुए थे यहूदी, खासकर यसरब ही में क्यों आके सेटल हुए थे?
जी
नहीं, ये लिख करके जवाब देना होता है इस क्लास में। जी, यसरब में क्यों आकर सेटल हुए थे? वहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आने वाले थे, हाँ, क्योंकि इनकी जो बुक्स थी ना उनमें आखिरी नबी का बहुत क्लियरली तज़किरा मौजूद था, उसमें ये भी बताया हुआ था कि जो आखिरी प्रॉफिट होंगे वो कहाँ आएंगे, किस इलाके में आएंगे, उस इलाके की सारी निशानियां लिखी हुई थी कि वहां पर खजूर के बागात होंगे, राइट, और ऐसे होगा, वहां पर ऐसे लोग रहते होंगे और ये होगा वो, बहुत सारी डिटेल्स। तो दे वर एबल टू आइडेंटिफाई यसरब एज द प्लेस जहां पर के आखिरी नबी ने आना है। ठीक है ना, तो उस वजह से ये लोग यसरब आके मूव हुए थे, वेटिंग फॉर द लास्ट प्रॉफिट। लेकिन ये लोग क्या समझते थे कि जो लास्ट प्रॉफिट आएंगे ना, जिस तरह पिछले 10,000 प्रॉफिट्स इन्हीं की फैमिली में से अल्लाह ताला ने भेजे थे, उसी तरह से जो आखिरी प्रॉफिट होंगे वो भी इन्हीं की फैमिली में से आएंगे। ठीक है ना, दे हैड दिस एक्सपेक्टेशन। لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا, ان کی فیملی میں سے آخری پروفٹ کو نہیں بھیجا. ٹھیک ہے, بہرحال تو عربیہ میں اراؤنڈ 20 ٹرائبس ان یہودیوں کے آ کر کے سیٹل ہو گئے. ٹھیک ہے, اچھا پھر کیا ہوا کہ یہاں سے پوری ایک سٹوری بن رہی ہے ایکچولی. ٹھیک ہے, نیکسٹ بگ ایونٹ, پیچھے ہم نے ایک بگ ایونٹ آپ کو پچھلی کلاس میں بتایا تھا نا کہ ری ڈگنگ اور ری ڈسکوری آف زمزم. اب ایک نیکسٹ بگ ایونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے اس کو شروع کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو اب آپ سنتے رہیں. ٹھیک ہے, وہ نیکسٹ بگ ایونٹ ہے کیا, اگر پہلے سے آپ میں سے کوئی پریڈکٹ کرنا چاہے تو بتا سکتے ہیں نیکسٹ بگ ایونٹ کیا ہوا تھا جس کو کہ اب ہم یہاں سے چلا رہے ہیں, سٹوری بنا رہے ہیں پوری کی پوری. They knew there was going to be a prophet because they were waiting for it. جی, اصحاب الفیل والا ایونٹ, ٹھیک ہے نا, ہاتھیوں والا ایونٹ. ٹھیک ہے, جس کا ذکر جو ہے وہ سورہ فیل کے اندر ہے, الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. ٹھیک ہے, اچھا تو یہودیوں کی بات ہو رہی تھی. ٹھیک ہے نا, تو ان میں سے ایک ٹرائب تھا, ان یہودیوں کے 20 ٹرائبز میں سے ایک ٹرائب تھا بنو قریظہ. قریظہ ٹھیک ہے, یہ بھی یثرب میں ہی آ کے سیٹل ہوا تھا. ایک آدمی جو ہے نا وہ آیا, عرب آدمی آیا, اس کا نام تھا ابو کرب. ابو کرب ٹھیک ہے, یہ یثرب آیا اور یہاں پر آ کر کے نا اس نے یہودیوں سے دیکھا کہ بھئی یہ کس قسم کے ریلیجن فالو کرتے ہیں, تو یہ بھی یہودی ہو گیا. یہ کنورٹڈ یہودی تھا, ہی واز ناٹ فرام دا فیملی آف بنی اسرائیل, لیکن کنورٹ ہو گیا یہودیزم کے اندر. ایسے بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, یہ سیکنڈ کلاس یہودی کہلاتے ہیں, جو کہ کسی دوسرے فیملی کو بلانگ کرتے ہیں لیکن وہ یہودی بلیفس کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں نا, تو یہ بھی یہودی ہو جاتے ہیں, لیکن یہ فرسٹ کلاس یہودی نہیں ہوتے بلکہ یہ سیکنڈ کلاس یہودی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو جیوز میں نا آپ کو دو کلاسز کم از کم ملیں گی. ایک کلاس وہ ہے جو کہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی ان کا فادر یا ان کا مدر یا دونوں بنی اسرائیل میں سے ہی تھے, وہ فرسٹ کلاس یہودی کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے, اور سیکنڈ کلاس یہودی وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ کسی دوسرے قوم سے تعلق رکھتے تھے لیکن انہوں نے یہودیت کو اڈاپٹ کر لیا, کنورٹ ہو گئے. ٹھیک ہے, تو یہ جو ابو کرب تھا نا یہ کنورٹ ہو گیا. اشکنازی جوز جو ہے نا وہ ان میں سے صرف ایک ٹائپ ہے, بہت ساری دوسری ٹائپس ہیں, دوسرے نام ہیں ان کے, لیکن اشکنازی از ون آف دوز ٹائپس جو کہ کنورٹ ہوئے ہیں جوڈائزم کی طرف. ٹھیک ہے, ہاں, جن کا ذکر ہم نے وہ سورہ کہف کے اندر بہت تفصیل سے کیا تھا, یاجوج ماجوج کے کانٹیکسٹ میں. ٹھیک ہے, اچھا, اب ابو کرب جو ہے نا یہ یہودی ہو گیا, اور اس نے پھر کیا کیا کہ بنو قریظہ کے دو علماء کو لیا, اسکالرس کو, اور ان کو لے کر کے جو ہے نا یہ آ گیا یمن. ٹھیک ہے, اور یمن میں نا پھر ان کے جو دو اسکالرس تھے, بنو کرب کے جو دو اسکالرس تھے, انہوں نے پھر یہودیت کی تبلیغ کرنی شروع کری, تو اس کی وجہ سے نا بہت سارے لوگ یہودی ہو گئے. ٹھیک ہے, یمن کے اندر اس ابو کرب کا ایک بیٹا تھا, اس کا نام لکھا ہے بکس میں یوسف ذو نواس. یوسف ذو نواس یہ ابو کرب کا بیٹا تھا. ٹھیک ہے, یہ جو یوسف ذو نواس تھا نا, اس کو نا اللہ تعالیٰ نے بادشاہت عطا فرمائی, یہ بادشاہ بن گیا. ٹھیک ہے, لیکن تھا تو یہ یہودی, لیکن جیسے بھی آپ کو بتایا نا کہ یہودی جو ہے نا یہ بہت گناہوں کے اندر مبتلا ہو جاتے تھے, بہت بڑے بڑے گناہ کرتے تھے. ٹھیک ہے, تو یہ ایون جو ہے نا شرک بھی کرنا شروع ہو جاتے تھے. تو یہ یوسف ذو نواس جو کہ ابو کرب کا بیٹا تھا, اس نے بھی شرک شروع کر دیا, اور اس نے لوگوں کو جو اس کے جو فالوورز جس کے عوام تھے نا, اس کے ملک کے جو لوگ تھے, ان کو اس نے فورس کرنا شروع کر دیا کہ مجھے تم خدا کہو. یہ خود خدا بن کر کے بیٹھ گیا, یعنی اپنے آپ کو خدا کہلانا شروع ہو گیا, مجھے ورشپ کیا کرو, میری ورشپ کیا کرو, اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ دوسرے بتوں کی بھی ورشپ کیا کرو. ٹھیک ہے, یہ یوسف ذو نواس کے ساتھ ایک بہت بڑا واقعہ پیش آیا. کون سا والا ذو نواس, کسی کو پتا ہے؟ یوسف ذو نواس, اس کے زمانے میں ایک بہت بڑا واقعہ پیش آیا جس کے اوپر قرآن مجید کے اندر ایک سورت موجود ہے, एनीवन एनी आइडिया, हैज एनी आइडिया कौन सी वाली सूरत है या कौन सा वाला वाकया है जिसका ताल्लुक यूसुफ जूनवास के साथ है? सूरह फील नहीं जी, सूरह बुरूज, जिन्होंने पहले से माशाल्लाह बुक पढ़ के रखी हुई है उनको पता होता है, सही है माशाल्लाह। तो सूरह बुरूज ठीक है ना, वस्समाई ज़ातिल बुरूज वल यौमिल मौऊद वशाहिदिन मशहूद कुतिला अस्हाबुल उखदूद, उस वाकये को अस्हाबुल उखदूद का वाकया कहते हैं। ठीक है, यही वो वाकया है कि जिसके अंदर वो जो यानी इस यूसुफ जूनवास के कोर्ट के अंदर एक मैजिशियन होता था, ठीक है, जो कि मैजिशियंस मैजिक किया करते हैं और बादशाह को खुश भी करते हैं मैजिक कर करके, ठीक है ना। और वो मैजिशियन से जो है ना वो पूछता भी ये चीज़ है कि मुझे ये मालूम करके बताओ, मुझे ऐसे मालूम करके बताओ, ठीक है। खैर, तो वो मैजिशियन इसके कोर्ट में होता था, फिर वो मैजिशियन जो है वो बहुत बूढ़ा हो गया और उसको लगा कि अब मैं मर जाऊंगा, तो उसने बादशाह से कहा कि मैं तो मरने वाला हूँ, तो तुम ऐसा करो कि अपने मुल्क में ना यानी लोगों में ऐलान कर दो कि कोई बहुत इंटेलिजेंट लड़का तुम तलाश करो, ऐलान कर दो कि मुझे एक बहुत इंटेलिजेंट लड़का चाहिए, और फिर बाकायदा सिलेक्शन प्रोसीजर के जरिए से एक इंटेलिजेंट लड़के को सिलेक्ट करके मुझे दो, सो दैट मैं उसको अपना मैजिक सिखा सकूँ, मैं उसको अपना मैजिक सिखा दूँ, क्योंकि मैं तो मर जाऊँगा तो मेरे बाद जो है ना ये सारी चीजें फिर मेरे साथ खत्म हो जाएंगी, तो मैं किसी को सिखा दूं ताकि वो तुम्हारे लिए ये सारे काम करता रहे, ठीक है। तो इस तरह से ना बादशाह ने फिर ऐलान किया और एक लड़के को, बहुत इंटेलिजेंट लड़का था जिनका नाम था आमिर, ठीक है, तो उनको फिर सिलेक्ट करके इस मैजिशियन के हवाले किया कि आप इसको मैजिक सिखाएं। अब मैजिशियन ने उस लड़के को मैजिक सिखाना शुरू कर दिया, ठीक है। अब वो लड़का रहता तो कहीं और था, लेकिन ये लड़का फिर रोजाना सुबह को बादशाह के कोर्ट में आता था और इस मैजिशियन से सारा दिन मैजिक सीखता था और फिर शाम के वक्त ही अपने घर वापस जाता था। एक दिन ये आ रहा था कि रास्ते में ना उसको एक आदमी के घर का दरवाजा खुला हुआ नजर आया, तो बाहर से अंदर नजर आ रहा था कि वो आदमी बैठा हुआ ना किसी तरीके से अल्लाह ताला की इबादत कर रहा है, कुछ कर रहा है। तो इसको ना वो देख करके बड़ा अच्छा लगा कि यार ये क्या कर रहा है, तो ये अंदर चला गया और इसने जाकर के ना उस आदमी से पूछा कि आप ये क्या कर रहे थे, तो उस आदमी ने इसको बता दिया कि भाई मैं अल्लाह ताला की इबादत कर रहा था। उसने पूछा भाई अल्लाह ताला कौन है, उसने बता दिया कि अल्लाह ताला हमारे क्रिएटर हैं, खालिक हैं, मालिक हैं और सिर्फ एक अल्लाह है, मैं सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करता हूँ। तो इसको ना उस आदमी की बातें बहुत अच्छी लगी, ठीक है जी, ठीक है माशाल्लाह। तो इन्होंने लिखा है माय फादर टोल्ड द स्टोरी टू मी, आई एम श्योर बहुत सारे बच्चों को ये स्टोरी बताई होगी या आपने पढ़ी होगी, मुख्तलिफ नामों से ये स्टोरी बुक्स के अंदर लिखी हुई है, द बॉय एंड द किंग इस नाम से भी ये स्टोरी है, असहाबुल उखदूद के नाम से भी स्टोरी है, ठीक है। हाँ, तो ये लड़का जो है ना फिर क्या करता था कि ये फिर रोजाना इन आदमी के पास आने लगा, ठीक है। अब ये सुबह को जब बादशाह के कोर्ट में जा रहा होता था ना, तो रास्ते में पहले इस आदमी के पास रुकता था, इससे कुछ बातें सीखता था, फिर बादशाह के कोर्ट में जाता था। अब जाहिर है इसकी वजह से उसको देर हो जाती थी पहुंचने में, तो मैजिशियन ना इससे पूछता था भाई कहाँ गए, तो ये कुछ नहीं बताता था, ये चुप रहता था, बड़ा अकलमंद बच्चा था ना, चुप रहता था, ये बताता नहीं था कि मैं तो उधर गया था, ठीक है। तो अब ये कुछ नहीं बताता था ना, तो वो मैजिशियन इसको मारता था, लेट आने के ऊपर इसको मारता था, लेकिन ये खामोशी से उस मार को बर्दाश्त कर लेता था। फिर जब शाम को ये वापस जा रहा होता था, फिर ये मैजिशियन के पास चला जाता था और उससे इबादत सीखता था, अल्लाह ताला के बारे में बातें सुनता था, ठीक है। और फिर ये घर पहुंचता था तो फिर ये लेट हो जाता था घर पहुंचने में, क्योंकि इतना टाइम वहां लगा के आया, तो घर वाले इसको मारते थे, क्यों लेट आए हो, तुम बाहर रहते हो, ये करते हो करते हो, लेकिन चूंकि ये नेक काम कर रहा था तो इस वजह से ना ये अच्छा काम कर रहा था, ये बुरा नहीं कर रहा था, ये बजाय तो है, लगता है कि जी ये बात नहीं मान रहा था, लेकिन ये दीन की वजह से ऐसा कर रहा था, इस वजह से अल्लाह ताला ने इसको अपना फ्रेंड बना लिया, ये अल्लाह ताला के वली बन गए, ठीक है। बहरहाल, तो ये रोजाना इसी तरीके से उन आदमी के पास जाता था, राहिब कहते हैं उस आदमी को जो कि वर्शिप करते रहते थे, ठीक है। तो राहिब के पास जाता था, दीन सीखता था और फिर जो है ना वो आगे जाके मार खाता था, फिर वापस आता था, दीन सीखता था और घर आके फिर मार खाता था, लेकिन बर्दाश्त करता रहता था, सबर करता रहता था, ठीक है। फिर एक दिन क्या हुआ कि जब ये जा रहा था ना रास्ते में, तो इसको बहुत सारे लोग नजर आए और बड़े परेशान लोग नजर आए, तो इसने पूछा भी क्या हुआ क्या हुआ, तुम लोग इतने सारे क्यों खड़े हो रास्ते में, परेशान क्यों? तो लोगों ने बताया कि भाई सामने ना एक बहुत बड़ा सा शेर वो आ गया रास्ते में और लोग उससे डर की वजह से परेशान है। अब कोई उस शेर को हटा भी नहीं पा रहा क्योंकि इतना बड़ा शेर है, कैसे उसको हटाए? ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा आगे बढ़ा, इसने देखा कि हाँ इतना बड़ा सा लायन खड़ा हुआ है। ठीक है, तो उस वक्त ना इसके दिल में एक अजीब अल्लाह ताला ने आइडिया डाला। इसने क्या किया, एक पत्थर उठाया और पत्थर उठा करके दिल में ये दुआ मांगी अल्लाह ताला से, क्योंकि ये तो अल्लाह ताला के बारे में सीख चुका था ना। तो इसने अल्लाह ताला से दुआ मांगी कि ए अल्लाह, अगर मैजिशियन का जो दीन है, जो कि बादशाह का जो दीन है वही मैजिशियन का भी दीन था, अगर मैजिशियन का दीन सच्चा है तो मेरे पत्थर से इस शेर को मत मारिएगा, मैं यानी पत्थर मारूंगा शेर को, अगर मैजिशियन का दीन सच्चा है तो मेरे पत्थर से शेर ना मरे, लेकिन अगर ये जो राहिब है जिसके पास मैं रोजाना जाके सीखता हूं, अगर उसका दीन सच्चा है तो मेरे पत्थर से वो शेर मर जाए, ये उसने दुआ मांगी। ठीक है ना, अब दिस वॉज हिज वे ऑफ बिकमिंग एब्सोल्यूटली श्योर, यकीन हासिल करने के लिए इसने ये दुआ मांगी अल्लाह ताला से। हालांकि ये पहले ही बिलीव करता था राहिब के दीन के ऊपर, लेकिन एक होता है ईमान और एक होता है यकीन, राइट? यकीन के लिए इसने अल्लाह ताला से ऐसी दुआ मांगी और फिर उसके बाद ना इसने खींच करके पत्थर मारा उस शेर को। अब भाई पत्थर से कोई शेर को थोड़ी मर सकता है ना, एक इवन नॉर्मल बुलेट से भी शेर नहीं मर सकता, शेर को मारने के लिए यू नीड अ बिग बुलेट, ठीक है ना, शॉटगन की बुलेट चाहिए या किसी और किस्म की चीज चाहिए, बहुत बड़ा होता है शेर। खैर, इसने जो पत्थर मारा ना तो उस पत्थर से शेर मर गया। ठीक है, अब एक तो इसको यकीन हासिल हो गया कि हाँ जो राहिब का दीन है वही सच्चा है, और दूसरा क्या हुआ, लोगों ने देखा पत्थर से शेर मर गया, ये कैसे हो गया? तो लोग ना समझना शुरू हो गए कि ये लगता है कोई बड़ा ही स्पेशल किस्म का आदमी है, इसने तो पत्थर से शेर मार दिया। तो लोगों में मशहूर हो गया कि भाई ये लड़का ना ही, इसके पास कुछ ताकतें हैं, कुछ इसके पास स्पिरिचुअल पावर्स है। ठीक है, बहरहाल अब ये फिर चला गया वहीं कोर्ट और फिर उसी तरह से सिलसिला चलता रहा। अब इस लड़के को ना अल्लाह ताला ने कुछ ऐसी पावर्स दे दी कि लोग जो है ना इसके पास जब आते हैं ना अपनी कोई प्रॉब्लम लेकर के, तो ये अल्लाह ताला से दुआ करता, उन लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। ठीक है, हत्ता के कोई अपनी बीमारी लेकर के आता ना तो ये अल्लाह ताला से दुआ करता, उस आदमी के ऊपर बस हाथ रखता, उस आदमी की बीमारी ठीक हो जाती, सेहतमंद हो जाता वो आदमी। ठीक है, तो इस तरह से लोगों में ये मशहूर हो गया कि भाई ये लड़का तो बड़ा जबरदस्त बंदा है, ये तो दुआ करता है अल्लाह ताला से और हम ठीक हो जाते हैं। एक दिन क्या हुआ कि बादशाह के कोर्ट के अंदर एक अंधा आदमी हुआ करता था, ब्लाइंड मैन। ठीक है, तो उस ब्लाइंड मैन को पता लगा कि ये लड़का एक है हमारे मुल्क में और वो लोगों को ठीक कर देता है। तो वो ब्लाइंड मैन अंधा आदमी इस लड़के के पास आया और इससे कहा कि भाई तुम मुझे ठीक कर दो, मेरी आंखों को ठीक कर दो। इसने कहा भाई मैं किसी को ठीक नहीं करता, मैं तो सिर्फ अल्लाह ताला से दुआ मांगता हूं। ठीक है, तो तुम ना अगर अल्लाह ताला पर ईमान ले आओ तो मैं तुम्हारे लिए भी दुआ कर दूंगा। ये यही करता था, ये लोगों से कहता था पहले अल्लाह पर ईमान लेकर के आओ फिर मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगा। ठीक है, तो उस ब्लाइंड मैन ने इसकी बात मान ली, वो अल्लाह ताला के ऊपर ना ईमान लेकर आ गया। आमिर, अभी बताया था ना आमिर, ठीक है, तो आमिर साहब ने उन ब्लाइंड मैन के लिए दुआ मांगी, अल्लाह ताला ने उस ब्लाइंड मैन को ठीक कर दिया। ठीक है ना, और वो ब्लाइंड मैन मुसलमान भी हो गया, सही है। अब वो ब्लाइंड मैन अगले दिन दोबारा बादशाह के कोर्ट में पहुंच गया। ठीक है ना, अब बादशाह के कोर्ट में जब ये पहुंचा ना तो बादशाह तो जाहिर है अपने कोर्ट में मौजूद लोगों को देखता था, तो इसने इस आदमी को देखा तो हैरान रह गया कि इसकी आंखें ठीक कैसे हो गई। तो इसने उससे पूछा कि तुम्हें क्या हो गया भाई, तुम तो अंधे थे कल तक, तुम्हारी आंखें कैसे ठीक हो गई? तो इस ब्लाइंड मैन ने ना बादशाह को बता दिया, नहीं बादशाह को कह दिया, सिर्फ ये नहीं बताया नहीं बल्कि ये कहा कि मेरी आंखों को अल्लाह ताला ने ठीक किया क्योंकि ये मुसलमान हो गया था। अब बादशाह ने कहा भाई ये अल्लाह ताला क्या चीज होते हैं, अल्लाह ताला कौन? ठीक है ना, हालांकि बादशाह को पता तो था लेकिन होता ना कि भाई ये बादशाह तो लोगों से कहता कि मैं खुदा हूं। ठीक है, तो अब उसने इस तरह से अनजान बन करके कहा कि भाई ये कौन होता है, अल्लाह कौन होता है? तो उस आदमी ने बताया भाई अल्लाह वो है कि जिसने हम सबको बनाया और हमें उसी की इबादत करनी चाहिए। ठीक है, तो बादशाह को आया गुस्सा, उसने कहा तुम ये बताओ तुम्हें ये सारी बातें किसने बताई है? ठीक है ना, उसने कहा नहीं मैं नहीं बताता, मैं नहीं बताता। बादशाह ने इसकी पिटाई लगवाई, तो इस ब्लाइंड मैन यानी जो अब ठीक हो चुका था इसने बादशाह को बता दिया कि भाई एक लड़का होता है आमिर साहब, उनके पास में गया था, उन्होंने ये सारी मुझे बातें बताई हैं और वो बहुत नेक आदमी है वगैरह। ठीक है, तो बादशाह ने ना फिर अपने सोल्जर्स भेजे कि उस लड़के को ना मेरे पास लेकर के आओ। अब वो लड़का तो था ही, पहले ही आता था बादशाह के पास मैजिक सीखने के लिए, ठीक है। खैर बादशाह न्यू हिम फ्रॉम बिफोर। एनीवे वो लड़का आया। अच्छा उस लड़के से जो है ना राहिब ने कह दिया था कि किसी को बताना नहीं मेरे बारे में, ठीक है। तो लड़का जब बादशाह के पास पहुंचा ना इस तरीके से सोल्जर्स के साथ, तो बादशाह ने लड़के से पूछना शुरू किया, तो लड़के ने भी मना कर दिया। लेकिन फिर बादशाह ने खूब पिटाई लगवाई इस लड़के की, ठीक है। तो इसने भी बता दिया कि भाई राहिब ने मुझे बताया था। अब बादशाह ने सोल्जर्स भेज करके राहिब को भी बुलवा लिया, ठीक है। अब इन तीनों को बोला कि भाई तुमने ये क्या किया है, मैं खुदा होता हूं, मेरी तुम इबादत किया करो, तुमने ये किस अल्लाह की इबादत करनी शुरू कर दी है, ठीक है। तो सब ने ना इनकार कर दिया, इन तीनों ने इनकार कर दिया कि नहीं नहीं हम नहीं तुम्हारी इबादत करेंगे, हम तो अल्लाह की ही इबादत करेंगे। तो बादशाह ने अपने सोल्जर्स को हुक्म दिया कि ये जो ब्लाइंड मैन जो है, ठीक है, और ये राहिब जो है ना, इन दोनों को तो मार दो, कत्ल कर दो। तो इन दोनों को उधर ही कत्ल कर दिया बादशाह के सोल्जर्स ने, ठीक है। लेकिन इस लड़के को बादशाह ने कत्ल नहीं करवाया, बल्कि सोल्जर से कहा कि इस लड़के को जो है ना तुम कहीं दूर ले जाओ, पहाड़ के ऊपर इसको लेकर के जाओ और पहाड़ की चोटी पर से इसको धक्का दे करके मारो, ठीक है। तो सोल्जर्स इस लड़के को लेकर के एक पहाड़ के टॉप के ऊपर गए और वहां जाकर के ना, इससे पहले कि वो इस लड़के को धक्का देते, अल्लाह ताला ने ना पहाड़ को के ऊपर ना एक अर्थक्वेक भेज दिया, एक जलजला। तो पहाड़ हिलना शुरू हो गया। उसमें क्या हुआ कि जो सोल्जर्स थे ना वो तो पहाड़ से गिर करके मर गए, लेकिन ये लड़का बच गया। अब ये लड़का जो था ना आमिर साहब, ठीक है, ये वापस बादशाह के कोर्ट में आ गए, ठीक है ना। अब बादशाह हैरान, तुम कहां से वापस आ गए, है ना, मैंने तो सोल्जर्स को तुम्हारे तुम्हें मारने के लिए भेजा था। तो उस लड़के ने बता दिया कि भाई अल्लाह ताला ने मुझे बचा लिया और तुम्हारे सोल्जर्स मर गए। अब बादशाह को और सटपटा गया, ये तो है, ये क्या हो गया भाई। तो खैर बादशाह ने फिर सोल्जर्स को कहा कि इसको फिर लेकर के जाओ और समंदर में कश्ती के ऊपर लेकर के जाओ, और समंदर के जब बीच में पहुंच जाना तो इस लड़के को पानी में फेंक देना, ठीक है। तो अब फिर भाई सोल्जर्स लेकर के जब आए ना, तो पानी के अंदर जो है वो अल्लाह ताला ने वेव्स भेजनी शुरू कर दी, वेव्स आनी शुरू हो गई, और उन वेव्स के अंदर पानी जो कश्ती थी वो ऐसे जो है वो हिचकोले खाना शुरू हुई कि जो सोल्जर्स थे ना वो तो यानी सारे लोग, बल्कि कश्ती उलट गई और सारे लोग पानी के अंदर, लेकिन जो सोल्जर्स थे वो तो ड्राउन हो गए, लेकिन ये जो लड़का था ना इसको वेव्स ने उछाल करके जो है वो शोर के ऊपर फेंक दिया, बीच के ऊपर फेंक दिया, ठीक है। बहुत होता है इस तरीके से कि जब कोई शिप ड्राउन होता है तो उसमें से किसी को अल्लाह ताला इस तरीके से सोल्जर के वो शोर के ऊपर फिकवा देते हैं, वो बच जाता है, ठीक है। तो इस लड़के के साथ भी ऐसे ही हुआ, ये लड़का जो है वो जिंदा फिर वापस बादशाह के कोर्ट में आ गया, ठीक है ना। इसी तरीके से शायद एक और भी वाकया हुआ, मुझे पूरी वो स्टोरी याद नहीं, आप में से किसी को याद हो तो आप बता सकते हैं। इसी तरह एक और भी तरीका बादशाह ने यूज किया उसको मरवाने का, लेकिन ये लड़का नहीं मरा बल्कि सोल्जर्स मर गए, ठीक है ना। तो अब जब ये तीन चार मरतबा इस तरह से हो गया ना, तो उसके बाद इन आमिर साहब ने बादशाह से कहा कि बादशाह मैं इस तरह नहीं मरूंगा, ठीक है, मैं ऐसे नहीं मरने वाला हूं। अगर तुम मुझे मारना चाहते हो ना तो उसका तरीका मैं तुम्हें बताता हूं, ठीक है। बादशाह ने कहा अच्छा बताओ। तो उसने कहा कि भाई मुझे तुम्हें मुझे मारने के लिए ना तुम्हें ये करना पड़ेगा कि तुम अपने पूरे मुल्क में ऐलान करवा दो कि मैं इस दिन इस वक्त इस लड़के को मारूंगा, ताकि सारे लोग जो है ना वो जमा हो जाएं। जब सारे लोग जमा हो जाएं ना, तो तुम फिर जो मेरा, यानी उस लड़के ने कहा कि जो मेरा बो एंड एरो है, तीर कमान, तुम उस तीर कमान को लो और फिर बिस्मिल्लाह पढ़ करके, ठीक है, बिस्मिल्लाह पढ़ करके एक तीर चलाओ मेरी तरफ, वो तीर मुझे लगेगा, उस तीर से मैं मरूंगा, ठीक है। जब तुम बिस्मिल्लाह पढ़ करके तीर चलाओगे तो उस तीर से मैं मरूंगा, ठीक है। तो बादशाह ने सोचा यार किसी तरह से तो मरे ये, कम से कम मेरी जान छूटे। तो बादशाह तैयार हो गया जूनवास, ठीक है। तो इसी तरीके से उसने ऐलान किया जैसे लड़के ने कहा था, सारे लोग जमा हो गए, बहुत थाउजेंड एंड थाउजेंड ऑफ लोग जमा हो गए, ठीक है। फिर इसने जो है ना वो सबके सामने खड़े होकर के तीर कमान से तीर चलाया बिस्मिल्लाह पढ़ करके। अब जाहिर है करीब के लोगों को आवाज आई होगी, बाकियों को उन्होंने बता दिया होगा कि भाई इसने बिस्मिल्लाह पढ़ा था। अब हजारों लोगों, उस जमाने में लाउड स्पीकर तो नहीं होते थे, लेकिन दैट्स हाउ पीपल यूज्ड टू टेल, एक एक ने दूसरे को बताया, दूसरे ने पीछे बताया, दूसरे ने पीछे बताया, जिस तरह जब हम नमाज पढ़ते हैं तो अगर लाउड स्पीकर हमारा ख़राब हो जाए तो मुकब्बिर होता है ना, अल्लाह अकबर इमाम कहता है तो पीछे एक अल्लाह अकबर कहते हैं, फिर उसके पीछे कुछ लोग अल्लाह अकबर कहते हैं ताकि सब लोग सुन सकें, है ना। तो इसी तरीके से सब लोगों ने सुन लिया कि बादशाह ने बिस्मिल्लाह पढ़ करके तीर चलाया है। जब बादशाह ने तीर चलाया तो तीर जो है ना, यानी एरो आकर के इस लड़के आमिर की कनपट्टी के ऊपर लगा, ये फोरहेड होता है, ठीक है। तो फोरहेड पे लगा, इसने इमीडिएटली, जैसे होता है ना इमीडिएट रिएक्शन, इसने अपने हाथ को अपने फोरहेड की तरफ बढ़ाया, उस तीर को पकड़ा निकालने के लिए। जैसे तकलीफ होती है ना कोई चीज आपको लग जाए ऐसे तो आप निकालने की कोशिश करते हैं, इसने तीर को पकड़ा निकालने के लिए, लेकिन इससे पहले कि ये तीर को निकालते ये शहीद हो गए, इंतकाल हो गया उनका, ठीक है। अच्छा, जाहिर इनको बांध दिया था एक दरख्त के साथ, फिर बादशाह ने तीर चलाया था ताकि ये हिल विल ना सके। एनीवेज, तो इनका इंतकाल हो गया, शहीद हो गए। अब जितने लोग वहां पर मौजूद थे सब ने ये देखा, सबको इस लड़के के बारे में तो पता था कि ये बहुत नेक आदमी है, ये लोगों की तकलीफों को दूर कर देते हैं, अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, ठीक है। तो जब लोगों ने ये बात देखी ना कि ये लड़का जो है वो अपने ही बनाए हुए तरीके के मुताबिक इसने अपनी जान दे दी है और बादशाह ने बिस्मिल्लाह पढ़ के तीर चलाया तब ये लड़का मरा, तो इसको देख करके वो सारे लोग जो उधर मौजूद थे सब के सब मुसलमान हो गए, ठीक है ना, सब के सब मुसलमान हो गए। पहले ये कौन थे, पहले जो थे ना ये एक्चुअली नॉन मुस्लिम से, खैर जो भी थे नॉन मुस्लिम से, ठीक है, तो ये सारे के सारे मुसलमान हो गए। लेकिन ये मुसलमान जो हुए ना, तो उस जमाने में नबी अलैहिस्सलाम की दुनिया में आए नहीं थे, तो ये जो लड़का कौन से वाले इस्लाम को प्रीच करता था, ये ईसा अलैहिस्सलाम वाले इस्लाम को प्रीच करता था, ठीक है ना, क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम की नबूवत उस वक्त वैलिड थी, ठीक है ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले लास्ट प्रॉफिट वॉज ईसा अलैहिस्सलाम। तो बेसिकली जब ये लोग मुसलमान हो गए तो ये कौन से वाले मुसलमान हुए, ये ईसाई मुसलमान, यानी ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर ईमान लेकर के आए। जो राहिब था ना वो भी ईसाई था, ठीक है ना, और उस राहिब से ही आमिर साहब ने दीन सीखा था, ठीक है। अच्छा, ये सारे लोग मुसलमान हो गए, अब बादशाह के तो पैरों तले जमीन निकल गई, ये क्या हो गया भाई, पहले तो एक था, अब जो है वो इतने हजारों लोग मेरे मुसलमान हो गए, है ना। तो इसने फिर ऐलान किया कि भाई सब लोग जो है ना वो तौबा करें, यानी अपने इस्लाम से तौबा करें और वापस काफिर बन जाए, लेकिन सब ने इनकार कर दिया। तो फिर बादशाह ने जो है अपने सोल्जर्स को कह करके बड़ी बड़ी ट्रेंचेस खुदवाई, जिनको अरबी में उखदूद कहते हैं, बड़ी बड़ी ट्रेंचेस खुदवाई, उन ट्रेंचेस के अंदर जो है ना वो बहुत सारा जो है वो, यानी दरख्तों की लकड़ियां काट काट करके लकड़ियों को ठूसा और उन लकड़ियों में आग लगवा दी, ठीक है ना। अब वो जो ट्रेंचेस थी, यानी बड़े बड़े गड्ढे, ठीक है, और वो अब ट्रेंचेस ऑफ फायर बन गए, आग लग गई उन ट्रेंचेस के अंदर, ठीक है। जब खूब सारी आग लग गई ना उन ट्रेंचेस में, तो इसके सोल्जर्स ने सारे लोगों को पकड़ा, ठीक है, और पकड़ करके ना एक एक करके वो ट्रेंचेस के पास लेकर के आते, पहले उससे पूछते कि तुम क्या अपने इस नए दीन को छोड़ करके वापस बादशाह को पूजा करना शुरू करोगे या नहीं करोगे। वो आदमी जवाब देता, नहीं करूंगा, तो सोल्जर उसको जो है ना इस ट्रेंच ऑफ फायर के अंदर फेंक देते, वो नीचे गिरता और जाकर के शहीद हो जाता, ठीक है ना। अगले बंदे को लाते, पूछते तुम छोड़ते हो इस दीन को या नहीं छोड़ते, वो कहता नहीं छोड़ता, वो फेंक देते। इस तरह से इस बादशाह के सोल्जर्स ने 20,000, या किसी किताब में लिखा हुआ है 40,000, 40,000 लोगों को ऐसे ट्रेंच में फेंका, किसी एक ने भी दीन को नहीं छोड़ा, किसी एक ने भी इस्लाम को नहीं छोड़ा, सारे के सारे शहीद हो गए आग में जल कर, ठीक है। और उसी वक्त वो वाकया पेश आया कि एक औरत आई, उस औरत की गोद में एक बिल्कुल दूध पीता हुआ बच्चा था, न्यू बॉर्न बेबी था। जब वो औरत आई, उससे जब पूछा ना, तो वो थोड़ा सा डरी, ठीक है। तो जब वो डरी ना, तो उस बच्चे को अल्लाह ताला ने बोलने की पावर अता फरमाई, उस बच्चे ने अपनी अम्मी से कहा कि अम्मी आप बिल्कुल ना डरिए, आप इसमें चली जाइए, मेरे साथ चली जाइए, अल्लाह ताला हमें जन्नत अता फरमाएंगे। उस न्यू बॉर्न बेबी ने बोला, दिस वॉज वन ऑफ द फोर न्यू बॉर्न बेबीज हु एक्चुअली टॉक्ड व्हेन दे वर बेबीज। चार बेबीज दुनिया के अंदर ऐसे गुजरे हैं कि जिन्होंने अपने इतने छोटे एज के अंदर बात करी थी। ईसा अलैहि सलाम वाज वन ऑफ देम, ठीक है ना, आपको पता ही होगा। तो उस औरत ने भी फिर छलांग लगा दी, ठीक है। बहरहाल 40,000 के करीब लोग जो है ना वो इस तरीके से उस बादशाह ने मरवा दिए, ठीक है। अब ये वाकया फिर कुरान में असहाबुल उखदूद के नाम से सूरह बुरूज के अंदर मौजूद है, ठीक है। अब ये जब हो गया ना, तो अब ये खबर जो है फिर पूरी दुनिया में फैली। क्या खबर फैली? कि भाई ये जो बादशाह है, ठीक है, ये तो जू बादशाह था, इसने जो है ना वो इतने सारे क्रिश्चियंस को कत्ल कर दिया, क्योंकि ये लोग क्रिश्चियंस थे ना, ईसा अलैहि सलाम के दीन के ऊपर ईमान लेकर के आए, ठीक है। इतने सारे क्रिश्चियन मार दिए। अब दुनिया में क्रिश्चियंस के पास ना उस वक्त एक बहुत बड़ी किंगडम आ चुकी थी, जो रोमन किंगडम कहलाती थी, बाइजेंटाइन किंगडम, ठीक है ना। तो बहुत बड़े उनके पास, यानी बहुत बड़ा बादशाह था, बड़ी उनके पास, यानी दे वर वन ऑफ द सुपर पावर्स ऑफ द वर्ल्ड एट दैट टाइम, है ना। तो जब रोमन बादशाह को पता चला कि यमन के अंदर इस यहूदी बादशाह ने, क्योंकि ये मुशरिक था लेकिन कहलाता तो यहूदी था, खैर जब यानी पता लगा ना कि जूनवास ने जो इतने सारे क्रिश्चियंस को मार दिया है, तो रोमन बादशाह ने अपने एक यानी सबॉर्डिनेट जो के इथियोपिया का बादशाह था, जिसको नजाशी कहते हैं, ठीक है, तो इथियोपिया के बादशाह नजाशी को लेटर लिखा कि तुम चूंकि यमन के करीब रहते हो, यमन और इथियोपिया के बीच में सिर्फ पतला सा रेड सी है ना, तो नजाशी को लेटर लिखा कि तुम जो है ना इस बादशाह से ईसाइयों का बदला लो, ठीक है। तो नजाशी जो कि खुद भी क्रिश्चियन था और ही यूज्ड टू बी अंडर द रोमन किंग, रोमन एम्पायर, ठीक है। तो नजाशी ने फिर एक बहुत बड़ी आर्मी प्रिपेयर करी, और उस आर्मी का लीडर कौन था? उसका नाम था अब्रहा, ठीक है ना, यानी ये अफ्रीकन इथियोपियन आर्मी थी जिसका लीडर अब्रहा था। नजाशी ने अब्रहा के साथ इस आर्मी को यमन भेजा ईसाइयों का बदला लेने के लिए। अब्रहा जो है वो बोट्स के अंदर, बड़ी बड़ी बोट्स होंगी, उन पर बैठ करके इस आर्मी ने, अब्रहा की आर्मी ने रेड सी को क्रॉस किया, दे केम ओवर टू यमन, और यहाँ पे आकर के इसने जूनवास के ऊपर हमला किया और वहां पर ना इन सबको जो है वो मार करके खत्म किया, ठीक है ना। जब मार दिया, खत्म हो गई, ये जूनवास वाली किंगडम खत्म हो गई, तो अब जो है ना अब्रहा ने वहां पर अपनी किंगडम बना दी, एंड अब्रहा बिकेम द बादशाह, ठीक है। अब ये जो किंगडम थी, ये कौन सी किंगडम थी, इनका रिलीजन क्या था? ये ईसाई थे, ठीक है ना, और इनकी यानी फैमिली यानी नस्ल कौन सी थी? ये अफ्रीकन्स थे, हबशी जिनको कहते थे, ठीक है। तो हबशी लोगों की ईसाई किंगडम जो है फिर यमन के अंदर एस्टैब्लिश हो गई, ठीक है। यहां तक जो है वो हम आज क्लास के अंदर पढ़ चुके, और इंशाल्लाह इसके आगे अगली क्लास के अंदर आपको बताएंगे। किसी को कोई सवाल पूछना हो तो पूछ लीजिए, ठीक है। हाँ, we tried to destroy the Kaaba, यहां से फिर जो है ना वो असहाबुल फील वाला वाकया शुरू होता है। तो आज हमने आपको क्या बताया, टू रीकैप, पहले तो हमने आपको इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ के बारे में बताया था, जो आपने हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मांगी थी और अल्लाह ताला ने उसको कबूल किया, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने आपको बुतों के बारे में बताया कि बुतों की परस्तिश कैसे मक्का मुकर्रमा में शुरू हुई, और चंद बुतों के नाम भी बताए। फिर हमने आपको ज्यूज इन अरेबिया के बारे में बताया कि 20 ट्राइब्स थे, उनमें से एक ट्राइब बनू कुरैज़ा था, तो उसका एक यानी एक आदमी अबू कर्ब जो यमन से गालबन आया था वो कन्वर्ट हो गया, और उसने फिर दो यहूदी आलिमों को लेकर के वो यमन वापस आया, और उनकी वजह से यमन के लोग यहूदी हो गए। फिर उसका बेटा यूसुफ जूनवास था, जिसने के पूरी किंगडम और शिर्क शुरू कर दिया, और फिर ये सारा असहाबुल उखदूद वाला वाक़या पेश आया, और फिर असहाबुल उखदूद को जिन लोगों ने मारा था उनसे बदला लेने के लिए ये हबशी बादशाह अब्रहा यमन आया और उसने फिर अपनी किंगडम बना ली यहाँ पे आकर के। ठीक है, हु वर द फोर न्यू बॉर्न बेबीज, सबके नाम पता नहीं मुझे अभी याद हो कि नहीं, लेकिन एक तो यही बच्चा था, नाम तो खैर सबके नाम वैसे भी नहीं पता, लेकिन वन जो असहाबुल हुदूद के वाक़े में, दूसरा थे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, तीसरे थे यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़माने में जो एक न्यू बॉर्न बेबी था, नाम के लिए गवाही नहीं, ऐसे नहीं कर रहा, ठीक है, लिख करके जवाब दें। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा था ना, तो एक बच्चे ने यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए गवाही दी थी कि नहीं, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कोई गलत काम नहीं किया था। ठीक है, तो थर्ड बेबी जो है वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़माने वाला बेबी था, और फोर्थ बेबी जो था ना वो बनी इसराइल के ही अंदर एक बहुत नेक आदमी होते थे जुरैज, ठीक है ना। तो जुरैज के साथ भी एक वाक्य पेश आया, तो जुरैज की भी पाकदामनी की गवाही एक न्यू बॉर्न बेबी ने दी जुरैज की। ठीक है, तो चार कौन से हो गए, सबसे बड़े तुमने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हो, ठीक है ना, जिन्होंने के अपनी अम्मी की गोद से वो बोला था कि मैं ईसा इब्ने मरियम हूँ और मैं अल्लाह ताला का नबी हूँ, और ये मरियम के अंदर जो पूरा लिखा हुआ है, और तीन जो थे वो आम बच्चे थे जिन्होंने अल्लाह के हुक्म से उस वक्त बात कर ली थी। ठीक है, कोई और सवाल, चलें फिर हम क्लास को ख़त्म करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।